भागवतम प्रथम स्तम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 29 एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीरः चित्वा सेतुस्नेह पाशान्द्रजिह्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिता एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीरः चित्वा सेतुस्नेह पाशान् दृढिन्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिता एवं इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र विदुरेण अनुजेन अपने छोटे भाई विदुर द्वारा प्रज्ञा चक्षुः आँखें बोधितः समझी जाकर आजमीढः धृतराष्ट्र जो आजमेर वंश की संतान थे चित्वा तोड़कर स्वेसु संबंधियों के विषय में स्नेह पाशां स्नेह के बंधनों को दृढ़ता के कारण निश्चक्राम बाहर चले गए भ्रातृ अपने भाई द्वारा संदर्शित दिखलाए हुए अध्वान मुक्ति पथ अनुवाद मेरी पिछले बोलिए इस प्रकार अजमेर की संतान महाराज धृतराष्ट्र ने प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास छिन्न कर दिए तत्पश्चात वे घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा सुना प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के सिद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक हैं और उन्होंने साधु संत पर बल दिया तो बड़ी प्रसिद्ध प्यार है बंगाली क्या है जानते आप लोग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो एक क्षण की जो संगति है उससे भी सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है व्यक्ति को। तो जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो ये जो है बिल्कुल व्यवहारिक श्रीमद् भागवत में विदुर जी की जो है संगति हुई धृतराष्ट्र को, और कितने सालों से अज्ञान भरा था, और विदुर जी की संगति थोड़ी देर की संगति, कुछ शब्द उन्होंने सुने धृतराष्ट्र ने, तो सर्व सिद्धि हो गई, संपूर्ण सिद्धि, मतलब दिशा की ओर चल पड़े धृतराष्ट्र। तो साधु संघ से व्यक्ति को दिशा प्राप्त होती है, वो कहाँ जा रहे हैं अंधकार की तरफ और कहाँ प्रकाश की ओर, जहां दिशा मिल गई तो बस सर्वसिद्धि हो गई। ये तो सर्वसिद्धि है, चलना आपको है, आप जा रहे हैं अंधकार की तरफ और आपको साधु संघ से क्या हो गया, आपको मोड़ दिया, साधु ने आपको मोड़ दिया प्रकाश की तरफ मोड़ते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं नरक की तरफ और कहाँ आपको दिशा मिल गई वैकुंठ की, है कि नहीं। तो इसी को सर्व सिद्धि कहते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। इन साधु संघ से वो दृष्टि प्राप्त होती है, वो दिशा प्राप्त होती है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे, हमें यह स्वीकार करते हुए स्वयं भी लज्जा नहीं आ रही है, आप ध्यान से सुनिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हमें यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। कौन कह रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ये स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। मतलब प्रभुपाद जी अपनी तुलना कर रहे हैं किससे, धृतराष्ट्र से। जैसे धृतराष्ट्र अंधे हैं और विदुर जी क्षण भर के सत्संग से उनको जो है दिशा मिल गई और कहाँ जा रहे हैं नीचे नरक की तरफ और कहाँ चले गए वैकुंठ की ओर दिशा मिल गई। तो प्रभुपाद जी भी अपनी तुलना कर रहे हैं किससे, धृतराष्ट्र से। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कोई लज्जा नहीं आ रही, इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई लज्जा नहीं आ रही है। लेकिन हमें क्यों लज्जा आती है, हमें इस बात को स्वीकार करने में क्यों लज्जा आती है कि हम कितने अज्ञान में हैं, कितनी माया में हैं, हमको लज्जा आती है क्यों, नित्य अहंकार है, हमारी इज्जत घट जाएगी अगर अपनी गलती स्वीकार कर लें, क्षमा मांग लें, प्रभु जी मेरे से गलती हो गई माफ करो, तो लज्जा आती है, ऐसा हम नहीं कर पाते क्यों, नित्य अहंकार, इज्जत कम हो जाएगी, इज्जत घट जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी को लज्जा नहीं आती, ये विनम्रता। तो प्रभुपाद जी अपने को धृतराष्ट्र जैसा मान रहे हैं, और प्रभुपाद जी जीवन में विदुर कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विदुर है, जिन्होंने डांटा प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको डांटा प्रभुपाद जी को, क्या शब्द कहे कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो तो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार अंग्रेजी भाषी जगत में क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये इस बात को कहने में हमें लज्जा नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। क्या कि हम धृतराष्ट्र के समान ही अंधे थे, मूर्ख थे, अज्ञानी थे। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, बड़े सुंदर समय है प्रभुपाद से, यदि कुछ क्षणों की प्रथम भेद के समय, ये भी कुछ क्षणों की प्रथम भेद, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है इसका जो है व्यवहारिक रूप से प्रभुपाद जी पुष्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संघ सर्व से जो है। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि कुछ क्षणों की प्रथम भेद के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा ना हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद भागवत के वर्णन का ये गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना असंभव होता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे लिए असंभव था ये सोचना भी कि मैं श्रीमद भागवत की अंग्रेजी में व्याख्या लिखूं, ये मेरे लिए सोचना भी असंभव था। कुछ क्षणों का भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का अगर मुझे सत्संग नहीं मिला होता तो मेरे लिए सोच पाना असंभव था, करने की तो बात छोड़ो सोचना भी असंभव था मेरे लिए। प्रभुपाद जी देखिए उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते हैं। धुरंधर व्यापारी मतलब जिसको कहते हैं धन के पीछे पड़े रहे, धन के पीछे पड़ा रहता है व्यापारी, जिन्ना धन की चिंता करता है धुरंधर व्यापारी। तो धुरंधर व्यापारी होते हम, कि श्रीमद् भागवत का जो है कार्य कभी सोचा भी नहीं होता हमने। और यहाँ पर किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ ना होते, कभी समर्थ नहीं हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। तो देखा प्रभुपाद जी पहले अपना उदाहरण दे रहे हैं और दूसरा उदाहरण धृतराष्ट्र का, विदुर की संगति का प्रभाव धृतराष्ट्र के ऊपर। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबद्ध भौतिक आकर्षण के जाल से मजबूती से बंधे थे। पारिवारिक आसक्ति राजनीति और अर्थशास्त्र से मजबूती से बंधे थे। इसमें शब्द है, आप देख सकते हैं क्या है, तेसु इसमें है पासां दृढ़िन्नो, इसमें है पास अपने परिवार के प्रति स्नेह के बंधन में, दृढ़िन्नो का मतलब दृढ़ता से बंधे हुए, मजबूती से बंधे हुए, और सित्वा काट दिया, किसने काट दिया, धृतराष्ट्र ने काट दिया। लेकिन विदुर जी के पहने शब्द थे, विदुर जी के पहने शब्द चाकू के समान थे, धृतराष्ट्र ने काटे। अगर आप बड़े मजबूती से जो किसी रस्सी से बंधे हुए हैं, आपके हाथ में चाकू मिल जाए तो आप क्या करोगे, काट लोगे अपने बंधन को। तो वो चाकू धृतराष्ट्र को मिला किससे, विदुर जी के, विदुर जी के पहने शब्द, विदुर जी के जो कठोर शब्द थे, पहने शब्द थे, वो कठोर पहने चाकू के समान थे। धृतराष्ट्र ने अपने कठोर जो बंधन थे, मजबूत बंधन थे, उनको काट डाला। तो रूपा लिखते हैं, और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अस से इसी तक असफलता ही हाथ लगी। रूपा जी क्या लिखते हैं, सुनियोजित परियोजनाएं धृतराष्ट्र की थी, सुनियोजित परियोजनाएं, बड़ी योजनाएं मतलब बड़ी बड़ी योजनाएं, और सुनियोजित अच्छी प्रकार से उनकी व्यवस्था की थी धृतराष्ट्र ने। जैसे भीम जैन को विष खिलाना, तो बड़ी अच्छी प्रकार से योजना बनाई, भीम जैन को विष खिला करके और गंगा जी में बहा दिया और किसी को पता नहीं चला। बाकी चार पांडव बचे और एक तुलसी महारानी बची, जो कि चिंतित हैं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। धृतराष्ट्र जो है बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, दुर्योधन बहुत कूटनीतिज्ञ था, और कुंती देवी महसूस कर रहे हैं कि अगर हम कुछ शिकायत करें तो और संकट में फंस जाएंगे। केवल विदुर जी से अपना दुख बता सकते हैं और विदुर जी कुंती का दुख समझ सकते हैं, और विदुर जी कुंती से कहते हैं कि भगवान की शरण लो, क्योंकि अभी ऐसे स्थान में हम लोग हैं कि अगर कुछ भी कोशिश की हमें और करने की तो और संकट में फंस जाएंगे। तो भीमसेन के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं विदुर जी और कुंती महारानी, और कुछ बताने की भीमसेन कहाँ गए, और भीमसेन जानते कहाँ गए, गंगा जी में अगर बहा दिया जाए किसी को तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा, गंगा जी में किसी को बहा दिया जाए तो अंतदा कहाँ जाएगा वो, समुद्र में जाएगा, और खतरनाक स्थान है समुद्र, है ना, उपस्तरकों के द्वीप में पहुंच गए। तो भीमसेन की रक्षा की भगवान ने, और अमृत भीमसेन को और अमृत पीने को मिल गया वहां तर्पों के स्थान में, और ज्यादा बलवान होकर के आ गए। तो उन्होंने मार डालने की कोशिश की और धृतराष्ट्र को असफलता हाथ लगी। यहाँ पर बच्चे अस से इति तक, अस माने शुरू से और इति माने अंत तक, प्रत्येक योजना में शुरू से अंत तक धृतराष्ट्र पर सफलता हाथ लगी। और क्या योजना बनाई थी, कुंती सहित पांच पांडवों को जला दिया जाए लास्ट के महल में। तो फिर से उनको शुरू से ही उनको असफलता हाथ लगी। क्यों, विदुर जी ने एक बार अपना जासूस भेज दिया जो कि पांडवों को सचेत करता कर दिया उसने कि ये स्थान जो है प्रज्वलनशील स्थान है, ये बच करके रहो। और एक आदमी और भेज दिया विदुर जी ने, जैसे सुरंग बनाई सुरंग बनाता रहा है। तो धृतराष्ट्र की जो योजनाएं सुनियोजित योजनाएं हैं उसमें असफलता शुरू से आखिर तक मिलती रही। जो पुरोचन था जिसने जिसको आदेश मिला था कि जब कुंती और पांच पांडव सो रहे हों तो तुरंत आग लगा देना और तुम भाग जाना, तो हुआ क्या, उल्टा हुआ। वो सो रहा था तो आग लगा करके और पांच पांडव कुंती सुरंग के मार्ग से बहुत दूर जंगल में निकल गए, है ना। तो धृतराष्ट्र की जितनी योजनाएं थी शुरू से आखिर तक सब क्या हुई, असफल हुई, फेल हुई। तो प्रभु कहते हैं असफल जीवन होते हुए भी उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से जो साधु का प्रतीक होता है आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। तो साधु रूपा जी कहते हैं साधु का मतलब क्या है, काटना, जो काटे। साधु अपने कठोर और तीखे वचनों के द्वारा काटता है। क्या काटता है, अज्ञान को काटता है, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कठोर शब्द बोलते हैं, क्या तुम महामूर्ख हो, है नहीं, अपने को बुद्धिमान समझते हो। अशोच्यानम अज्ञावासान से भाग सकते हो, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कठोर शब्द बोले प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी ने महसूस किया कि पहली बार उन्होंने जीवन में हार खाई, वो हारे किसी व्यक्ति के द्वारा। और प्रभुपाद जी प्रसन्न थे कि हाँ किसी ने उनको हराया। इसी प्रकार विदुर जी को जो है धृतराष्ट्र तीखे वचन बोलते हैं। अन्यथा जो पांच पांडव हैं वो तो उसके साथ धृतराष्ट्र से हमें बड़ा कोमल व्यवहार कर रहे हैं और धृतराष्ट्र का ज्ञान तो बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है। धृतराष्ट्र को निकालना बहुत जरूरी था पर घर से जो पांच पांडव और द्रौपदी हैं उनके लिए कोई विदुर जी ने चिंता नहीं की कि उनको निकाला जाए। अगर विदुर जी थोड़ा सा संकेत कर देते किस बात का कि भगवान कृष्ण चले गए हैं अपने परम धाम, तो उसी समय ही पांच पांडव द्रौपदी निकल गए होते, है ना। तो विदुर जी उल्टा कर रहे हैं, पांच पांडवों को और द्रौपदी को तो ये सूचना नहीं देना चाहते हैं, ये समाचार नहीं देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए, क्योंकि वो रहे, क्योंकि उनका रहना उनके रहने में कोई बंधन नहीं है, उनके रहने में सबका लाभ है, पूरी प्रजा जो है धर्म में स्थित है और अच्छा शासन चल रहा है प्रस्तुत का। तो विदुर जी पांच पांडवों को द्रौपदी को तो रखना चाहते हैं महल के अंदर, और आगे चलकर के क्या हुआ कि जैसे उनको समाचार मिला कि कृष्ण चले गए तो पांच पांडव द्रौपदी तुरंत ही निकल गए महल से। तो उनको निकालने की कोई जरूरत नहीं, उनको उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। उस मकान में आग लगने वाली है, धृतराष्ट्र को निकालना जरूरी, क्योंकि वो अंधा है, अंधे व्यक्ति को घर से निकालना चाहिए पहले। जिनके पास आंखें हैं और जो तैयार हैं निकलने के लिए हमेशा, तो जैसे देखते हैं आग लगी है तुरंत निकल जाते हैं, अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो पांच पांडव और द्रौपदी जो है ना उस प्रकार के हैं, इंद्रप्रस्थ जो है ना अंधा है। तो मकान में आग लगने से पहले अंधे आदमी को पहले निकाला जाए, तो विदुर जी जो है उसको निकालते हैं धृतराष्ट्र को।
तो प्रभुपाल लिखते हैं कि अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। इसी चैतन्य महाप्रभु ने एक और भी शिक्षा दी है, एक तो साधु संग की संगति साधु संग करना चाहिए, लेकिन जो गलत संग है उसका त्याग करना चाहिए। इसका भी एक प्रयास है बंगाली में, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, ये भी जरूरी है। दोनों बातें जरूरी है, साधु संग साधु संग इस पर बहुत जोर दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसके साथ है दूसरी बात भी बहुत जरूरी है, वो क्या है, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, असत संग का त्याग, क्योंकि वो जो है बिल्कुल उल्टा होता है। एक पद है सजहुरे मन हरि विमर्शन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। किसका लिखा हुआ है ये पद, सजहुरे मन हरि विमुखन को संग है, सूरदास का है शायद, सूरदास का, सजहु मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग, है ना। तो इस तरह की जो है और भी आगे पंक्तियां हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो भगवान से विमुख हैं उनका संग त्यागा जाए। और तुलसीदास का भी एक पद है जिसमें वो कहते हैं, जाके प्रिय न राम वै देही सजहु काही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो बहुत स्नेह ही क्यों ना हो, बहुत स्नेह करता हूँ तो भी है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा असत संग त्याग, असत संग का त्याग करना चाहिए, तो फिर असत कौन है, दो प्रकार के असत हैं यानी असाधु हैं, क्या है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर, एक तो स्त्री संगी जो कृष्ण संगी होते हैं, जो कृष्ण आसक्त होते हैं साधु, वो कृष्ण की चर्चा करते हैं, और जो हो स्त्री संगी असाधु वो स्त्री की चर्चा करते हैं, है कि नहीं, वो स्त्रियों की चर्चा करते हैं, स्त्री संगी एक साधु और कृष्ण भक्त, और दूसरे स्त्रियों की चर्चा तो नहीं करते हैं लेकिन कृष्ण के फिर भी भक्त नहीं है, वो कौन होते हैं, मायावादी, वो स्त्रियों का स्त्रियों के संगी तो नहीं होते हैं, वो भी स्त्रियों का त्याग करते हैं लेकिन कृष्ण के भक्त फिर भी नहीं है। तो दोनों प्रकार के असत संग को त्यागना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि समस्त प्रकार के संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए, इससे साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सु अवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न करने वाले हैं। तो ये प्रभुपाद जी की योजना है, ये श्रीमद् भागवत का जो क्लास है कक्षा है डेली हमें सुनना है, ये जो है हमारे अज्ञान को काटने के लिए, तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हमें साधुओं से श्रवण करने का पर्याप्त स्वस्थ प्राप्त होता है, और ये जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न करने वाले हैं। ये सत्य है कि यह जगत महान मोह यानी भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रति होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो समुद्र के उफन के खेल की भांति या आकाश में बादलों की भांति सुमंत्र हो जाती है। इस संसार में जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो कि लगते हैं कि ये हमारे अच्छे सुख के साधन है, अच्छे संबंध है, वो कहते हैं समुद्र में उफनते खेल, समुद्र में फेना बहुत दिखाई पड़ता है, बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बुलबुले होते क्या है, क्षणभर जो क्षणभंगुर होते हैं बुलबुले, है ना। उसी प्रकार ये भौतिक संसार है, ये संसार भी समुद्र के समान है, भव सागर किसको कहते हैं, तो भव सागर में जो दिखाई पड़ रहे हैं पारिवारिक संबंध दिखाई पड़ रहे हैं, सांसारिक जो कार्यकलाप दिखाई पड़ रहे हैं, ये बुलबुलों के समान है, समुद्र के बुलबुलों के समान है, बहुत दिखाई पड़ते हैं बुलबुले समुद्र में। और दूसरा आकाश में बादल, आकाश में बादल बहुत दिखाई पड़ते हैं। फिर रूपा लिखते हैं आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविकता प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण क्षण भंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, किंतु कालक्रम से बादल वर्षा और हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन आकाश रह जाता है और आकाश के तारे रह जाते हैं। बादल जो है आकाश को ढक देते हैं और तारों को ढक देते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं ना आकाश दिखाई पड़ता है, और बादल ही बादल दिखाई पड़ते हैं। तो लगता क्या है कि बादल ही वास्तविक है और जो आकाश और तारे क्या है मिथ्या है ना। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि हरी वनस्पतियां भी विलुप्त हो जाती हैं, बादल भी विलुप्त हो जाते हैं, केवल आकाश रह जाता है और आकाश के तारे रह जाते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बने रहते हैं, और बादल स्वरूप मोह या भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जी क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वैचित्र से सरोकार रखते हैं। अब अंतिम जो प्रभुपाद का वाक्य है वो क्या है कि मूर्ख जी क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो शाश्वत आकाश और विचित्रता से सरोकार रखते हैं। शाश्वत आकाश, अब आकाश तो मायावादी कहते हैं भाई ठीक है आकाश ही वास्तविक है, और बादल जो है ना अगर मिथ्या है तो संसार मिथ्या है, और आकाश रूपी जो ब्रह्म है वो परम सत्य है, तो आकाश के समान ब्रह्म भी परम सत्य भी क्या है निर्विशेष है निराकार है। फिर प्रभुपाद ने क्या कहते हैं आकाश और विचित्रता, आकाश में बहुत से चित्र विचित्र तारे हैं विविधता है, तो आकाश जो है निर्विशेष नहीं है। आकाश में कई प्रकार के जो है विविध लोक हैं और उनमें स्थितियां हैं, कई प्रकार की स्थितियां हैं, बादल चले जाते हैं लेकिन वो जो आकाश और उसमें जो लोक हैं वो बने रहते हैं, तो विविधता है परम सत्य में विविधता है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। अच्छा अब आज क्योंकि उत्सव है पानीहाटी में रघुनाथ दास गोस्वामी का क्षीरदधि, जिसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ चैतन्य चरितामृत से। तो ये घटना है आज के दिन घटी, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को और उनके संगियों को क्षीरदधि का जो है भोजन कराया। तो ये घटना है कैसी, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आकर्षण से वो बार बार घर को छोड़ करके भागते हैं, और रोज लगभग रोज की एक बात हो गई कि रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग जाते हैं और उनके जो नौकर हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ करके ले आते हैं। तो फिर उनकी माता रघुनाथ दास गोस्वामी की माता है वो कहती है कि हमारा पुत्र पागल हो गया है उसे रस्सी से बांध कर रखो। तो पिता कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी के, गोवर्धन मजूमदार। तो वो कहते हैं कि हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी सब उसके मन को बांध नहीं पा रहे हैं। कितना धन है स्त्री है इसके मन को नहीं बांध पाते हैं, तो फिर इस बालक को रस्सियों से बांधकर हम घर पर कैसे रख सकते हैं। रघुनाथ दास की माता कहते हैं कि अपने पुत्र को रस्सियों से बांध करके रखो। तो कहते हैं सबसे बड़ा बंधन क्या है, धन और स्त्री। हमारे पास प्रचुर धन है, असली में धन है, तो बहुत सुंदर स्त्री भी है, लेकिन रघुनाथ दास को अगर नहीं बांध पाती है तो फिर कौन सी रस्सी से बांधा जाए। सबसे बड़ी रस्सी सबसे बड़ा बंधन क्या है, धन और स्त्री। रघुनाथ दास अगर इससे नहीं बन रहा है तो फिर कौन सा बंधन बांधा जा सकता है। और गोवर्धन मजूमदार जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा है अपने पुत्र, कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर कृपा की है, चैतन्य चंद्र के ऐसे पागल को घर पर कौन रख सकता है। समझते हैं फिलहाल पुत्र के प्रति मोह जरूर है, लेकिन साथ साथ उनके पास इतना ज्ञान है कि बड़ा सौभाग्य है हमारे पुत्र का जो कि चैतन्य महाप्रभु के लिए वो घर छोड़ना चाह रहा है। अब आज के दिन जो है रघुनाथ दास के मन में विचार आया और नित्यानंद महाराज के पास, नित्यानंद प्रभु के पास अब आए हो, तो अपने घर से अनुमति ले ली कि हम नित्यानंद प्रभु पास में है, पानी हाथी में है, सुना है कि पानी हाथी में आए हैं प्रचार के कार्य में, तो मैं उनका दर्शन करके आ जाऊंगा। तो बहुत से सैनिकों के साथ उनके पिता ने भेज दिया कि ठीक है, उनके दर्शन करके और आज के दिन ही वापस आ जाऊंगा। तो पानी हाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु से रघुनाथ दास की भेंट हुई और नित्यानंद प्रभु के साथ में बहुत से कीर्तन करने वाले हैं और बहुत से सेवक हैं और बहुत से दूसरे लोग भी नित्यानंद प्रभु के साथ। पानी हाटे ग्राम में पहला प्रभु रे दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। और वो पानी हाटी में आप जानते हैं कौन सी नदी है, पानी हाटी में गंगा नदी है। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक किला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु कैसे लगते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान जैसे उदय हुए हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उदय हुए हैं ऐसे दिखाई पड़ते हैं। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार है ऊपरे बसिया जेने को सूर्योदय करे। नित्यानंद प्रभु को घेर करके जमीन पर अनेक भक्त बैठे हुए हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देख करके रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। दूर से देखा नित्यानंद प्रभु को आश्चर्यचकित हो गए। तले ऊपर बहु भक्त छाया के विस्मित देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ है विस्मित। रघुनाथ दास दूर स्थान पर ही डंडे की तरह गिरकर नमस्कार करते हैं दूर से ही। और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इशारा किया कि वो रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। दंड वत हैया से पड़ी लाचक दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंड वत करे। ये सुनकर अब तुम मेरा दर्शन करने आए हो, तुमने पहले मेरा दर्शन नहीं किया, मतलब तुम चोरी करते रहे मेरे धन की, तुम चोरी करते रहे, तुमने चोरी करने की कोशिश की मेरे धन की। नित्यानंद प्रभु के धन कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो मुझसे मिले बिना तुम मेरे धन को चुराने जा रहे, सही भाषा में गए चुराने के लिए, तो तुम चोर हो, कितना अच्छा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अब तुम मेरा दर्शन करने आए हो, यहाँ आओ यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन आए आए आज चोर करी दंडम। प्रभु ने उन्हें बुलाया किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। क्यों रघुनाथ दास क्यों उनके निकट नहीं गए, बहुत भयभीत हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से बहुत भयभीत हैं। तब प्रभु ने बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया चोर मान करके। नित्यानंद प्रभु प्रभु बोलाए थे हो निकट न करे गमन आकर पिया तार माथे प्रभु धरी ना चरण। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु और विनोदी हैं, दयालु होने के कारण जी रघुनाथ दास किस तरह बोले हो तो के नित्यानंद ताजे दयामय रघुनाथ कहे किचो भैया सदय। अब नित्यानंद भगवान क्या कहते हैं, तुम चोर हो क्योंकि पास आने के बजाय तुम दूर रहे आते हो, परंतु क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है इसलिए तुम्हें दंड दूंगा, अब तुम मेरे हाथ में आ गए हो, तुम चोर हो। निकट न आए चोरा भाग दूरे दूरे आज लागू पाया की दंडी मुंह तुम्हारे। और दंड क्या है, नित्यानंद को उन्हें दंड दिया, क्या दंड है, तुम भोजन दो और मेरे संगियों को दही और चिवड़ा खिलाओ। ये सुनकर रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हुए, ऐसा दंड मिला जो कि बहुत ही आनंद देने वाला है। रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर मान करके दंड दिया। दही चीरा भक्षण का राय मोर जाने सुनी आनंद रघुनाथ मने। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार की भोजन की वस्तु खरीद कर लाने के लिए गांव भेजा। रघुनाथ दास चिवड़ा दही दूध मिठाइयाँ चीनी केला और अन्य भोजन की सामग्रियां ले आए और उन्हें चारों ओर रख दिया। जो ही लोगों ने सुना कि भोज होने वाला है तो सभी प्रकार के ब्राह्मण और अन्य सज्जन आने लगे, इसलिए असंख्य लोग हो गए। भीड़ बढ़ते देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से अधिक भोजन के पदार्थ मंगाने का प्रबंध किया, दूसरे गांवों से, मतलब एक गांव में वो चीजें समाप्त हो गई, सब खरीद लिया, जिसके पास जो कुछ था भोजन का सामान सब खरीद लिया है? और गांव में रहा नहीं कुछ खाने की चीजें, तो दूसरे दूसरे गांव से उन्होंने मंगाई। देखा रघुनाथ दास के पास पैसे की कमी नहीं थी, अपार धन था उनके पास, तो दूसरे गांव से फिर मंगाया भोजन का सामान। 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी उन्होंने मंगाए और 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी प्राप्त किए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु केवड़ा भिगोने लगा। बड़े बड़े कुंडी का आना इन 5-7 एक दिख्य प्रभु लागी केड़ा भी जाए साते। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में केवड़ा भिगोया गया, तब आधा चावल दही चीनी और केला के साथ मिलाया गया। एक ठाई सबसे प्रभु केड़ा भेजा अर्धे के छाने दही चीनी कंगा दिया और आधे भाग को औटे दूध में और विशेष प्रकार के केले में जो चापा कला कहलाता है मिलाया गया, तब चीनी घी और कपूर डाला गया। जब निश्चय प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके पर चबूतरे पर बैठ गए तो वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। इस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के अधिकांश प्रमुख संगी और 7 ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक घेरे में बैठ गए। चबूतरा ऊपर जैसे प्रभु निजे गणे बड़े बड़े लोग के बकीला मंडली रचने। अब उन भक्तों के नाम है जो नित्यानंद प्रभु के सामने चारों तरफ घेरा बना करके बैठे हैं। कौन कौन है? रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव और पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास और होड़ कृष्णदास और उद्धारण दत्त ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के अन्य निजी संगी उनके साथ कुछ चबूतरे के ऊपर बैठे। इनकी गणना कोई कर नहीं सकता कितने भक्त हैं नित्यानंद प्रभु के साथ में। और इस उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान आ गए, ब्राह्मण आ गए, पुरोहित आ गए। नित्यानंद प्रभु ने उन सबका सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बिठाया उन सबको। सुनी पंडित भट्टाचार्य जत्ते विप्र आईला मान्य कर प्रभु सवारे ऊपर बसैला। और हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में केवड़ा और मोटा दूध था, दूसरे में केवड़ा दही है, मिट्टी का पात्र, उसको क्या बोलते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं ना, दो दो कुल्हड़ दिए गए सबको, एक में दही केवड़ा और दूसरे में औटे दूध के साथ केवड़ा। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे, कोई यह नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे, गिनना संभव नहीं है कितने लोग में हम बैठे थे। आ रहे जब से लोग सब चौथा राम सलाने मंडली बंधे बसीला सारे ना है गल में। हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में दही और केवड़ा और दूसरे में औटे दूध में केवड़ा था। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया ये अपने दो दो मिट्टी के पात्र लेकर कहा गए, गंगा के किनारे चले गए और वहीं पर केवड़ा भिगोया। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका वे कहाँ चले गए, गंगा जी के पानी में घुस गए। तो कितनी संख्या थी लोगों की कि जमीन में भी जाना जगह नहीं मिली तो गंगा जी में घुस गए, वहीं पर पानी में घुस गए। और वहीं पर वो दोनों प्रकार का केवड़ा खाने लगे। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठे और उन सबों को भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा दो दो पात्र दिए गए। के है उपारे के है ताले के है गंगा तीरे जिसे जन्म ठाई परिवेशन करे। उस समय राघव पंडित आ गए और बड़े आश्चर्य से हंसने लगे राघव पंडित, क्योंकि राघव पंडित ने जो है नित्यानंद प्रभु के लिए अपने घर में भोजन तैयार किया है और यहाँ पर जो ना अचानक क्या हो गया तो वो जो ना हंस रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, मेरे घर में तो भोजन है निकालने तो होगा बना हुआ है और ये सब जो ना अब यहाँ चक्कर शुरू हो गया है। तो अपने साथ में वो घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने भेंट किया और नित्यानंद प्रभु के सामने वो प्रसाद रखा गया, फिर सब भक्तों में बांटा गया। राघव पंडित बोले नित्यानंद प्रभु से, महोदय मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चन वगैरह को भेंट कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, अब तो भोजन को अच्छी तरह ये भोजन फिर कौन खाएगा, आपके लिए मैंने भगवान को भोग लगाया इस भोजन का। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे ये सारा भोजन खाने दो और रात में मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा, जो तुमने बनाया है वो रात में खाऊंगा। क्यों? ये भोजन मैं पहले खाऊंगा और तुम्हारा भोजन रात में खाऊंगा, क्योंकि वो घर का है और ये क्या है कि जंगल का है, मैं ग्वालों की जाति का हूँ। नित्यानंद कहते हैं ज्यादा मुझे ज्यादा आनंद आता है क्या जंगल में भोजन करने में, क्योंकि मैं ग्वालों की जाति का हूँ। तो ग्वालों की जाति का तो नहीं नित्यानंद प्रभु, आप जानते हैं ब्राह्मण परिवार जन्म लिया उन्होंने, लेकिन क्यों कह रहे हैं मैं ग्वालों की जाति का हूँ, किससे जन्म बलराम से ग्वाल जाति का हूँ, मैं ग्वालों की जाति का हूँ, किसी समान किया मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं, जब हम नदी के बालुओं के तट पर इस तरह एक साथ खाते हैं तो बहुत आनंद आता है मुझे, तो भी बहुत अच्छा लगता है। गो प्रजाति आम बहु गोप गण संगे आमे सुखे पाई यही कुलिन भोजन रंगे। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठा लिया और उन्हें भी दो पात्र दिलाए जिनमें दो प्रकार के चिवड़े भिगोए हैं। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। अब देखा आप लोग ध्यान से सुनिए, कितनी संख्या है लोगों के लिए, कोई अभी शुरू नहीं कर रहा है, कितना कंट्रोल है। जिहवाती तार मध्य जिहवाती लोभा माया सुतुरमती ताके के कठिन संसारे, इतना स्वादिष्ट भोजन आ गया सबके सामने और जिहवा जो ना तू दुर्मती बहुत दुर्मती है, रोकना बड़ा मुश्किल है जीव को, लेकिन सब जो ना अपने जीव को बचने किए हुए थे, किसी ने भोजन नहीं किया। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। अब साक्षात चैतन्य महाप्रभु आ गए है ना, कोई देख नहीं सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आ गए। सकल लोक रचिला पूर्ण जग हिला ध्यान तब प्रभु महाप्रभु रे अनिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ के खड़े हो गए, ध्यान से बुलाया तो ध्यान में बैठे थे नित्यानंद प्रभु, जैसे चैतन्य महाप्रभु आ गए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु ने देखा चैतन्य महाप्रभु और किसी ने नहीं देखा, सब उन्होंने देखा कि कितने अन्य लोग दही और मोटे दूध के साथ चिवड़े का आनंद ले रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का एक कौर लिया और परिहास बस चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूंस दिया। प्रत्येक पात्र से लेकर के अब देखो कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख रहा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, इतनी दिखाई पड़ता है कि नित्यानंद प्रभु जो ना एक एक पात्र से वो निकालते हैं भोजन और ऐसे डाल रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु का हाथ दिखाई पड़ता है और फिर भोजन गायब हो गया। चैतन्य महाप्रभु के मुंह में गया भोजन और वो न तो चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते हैं ना नित्यानंद प्रभु के हाथ का भोजन दिखाई पड़ता है, इतना दिखाई पड़ता है उन्होंने निकाला भोजन तो ऐसे डाला, हवा में वो भोजन गायब हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हंसते भोजन का एक कौर लिया और नित्यानंद प्रभु के मुंह में ठूंस दिया। नित्यानंद को खिलाते समय चैतन्य महाप्रभु हंस रहे हैं। अब जब चैतन्य महाप्रभु निकालते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि भोजन निकला पात्र से, नित्यानंद प्रभु के मुंह में आया और नित्यानंद प्रभु मुंह में खा रहे हैं तो दिखाई पड़ता है कि उनके मुंह में भोजन आ गया है और खा रहे हैं नित्यानंद प्रभु। किस प्रकार का देखिए कैसा आश्चर्य है, हाथी महाप्रभु आज एक ग्रास लिया सारे मुख दिया खाओ आए हसिया हसिया। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की मंडलियों में से होकर घूम रहे हैं और सब वैष्णव लोग तमाशा देख रहे हैं। कि क्या हो रहा है। नित्यानंद प्रभु अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ घूम रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन एक दिखाई पड़ रहे हैं और एक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तो उन्होंने क्या किया ये कोई नहीं समझ सका, किंतु कुछ लोग जो भाग्यशाली थे वो देख सकते थे कि नित्यानंद प्रभु के साथ में कौन है, चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु वैसे कहां से आए पता है, कहां है वैसे चैतन्य महाप्रभु? जगन्नाथपुरी में है। और पानी आगे तो बहुत दूर है वहां से, है ना, बहुत दूर है। लेकिन ध्यान के द्वारा नित्यानंद प्रभु ने बुला लिया, इतनी इनकी शक्ति है नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु को एक क्षण में उन्होंने जगन्नाथपुरी से बुला लिया ना? और कुछ लोग देख पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर है। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिनी ओर चार पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान प्रदान किया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देख नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। देखिए नित्यानंद प्रभु आनंदित है ना, तत्व भावावेश प्रकाश करीना। हाँ, एक घटना और भी है। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की थी नित्यानंद से कि आप जो है ना प्रचार के लिए जाओ और जगन्नाथपुरी में आप मत आओ, क्योंकि मैं तो प्रचार नहीं कर सकता, माता के आदेश से बना हूँ, माता का आदेश है कि मैं जगन्नाथपुरी में रहूँ, जिससे माता को मेरा समाचार मिलता रहे, तो मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन आप जो है ना यहाँ मत आओ, आप प्रचार करो, पूरे गौड़ देश में आप प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु की एक शर्त थी, जिसे मैं बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस जो ना नित्यानंद प्रभु के इस वचन से बने थे, क्योंकि जब भी नित्यानंद प्रभु चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को वहीं आना पड़ता है। तो नित्यानंद प्रभु ने आगे दी, सभी लोग हरि नाम कीर्तन करते हुए भोजन करो। तो हरि हरि की ध्वनि से तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया। आज्ञा दिला हरि बलि करा भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरी ले भुवन। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण आया क्या कि किस तरह कृष्ण और बलराम के साथ वे पिछले जन्म में यमुना के तट पर भोजन करते थे। देखा, ये जितने भक्त हैं ये सब पूर्व जन्म के क्या हैं, ग्वाल बाल हैं। सबको याद आया कि कृष्ण बलराम के साथ में उन्होंने यमुना जी के तट में पहले भोजन किया करते थे। सबको याद आया अपना पिछला जन्म। हरि हरि बलि वैष्णव कराए भोजन, बोले न भोजन समार स्मरण। श्री नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु और उदार हैं। श्री रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिए। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथ भाग्य कैला अंगीकार। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और उनकी कृपा को कौन समझ सकता है, वे इतने शक्तिशाली हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर केवड़ा खाने के लिए आने के लिए विवश कर दिया उन्होंने। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी रे कौन जन, महाप्रभु आने का राय को लेने भोजन। देखा, नित्यानंद प्रभु के धन है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का पूरा अधिकार है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। रघुनाथ दास इतना प्रयास करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तक नहीं पहुंच पाते हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है ना तुरंत अपनी इच्छा से बुला लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनके धन है। जो जिसका धन होता है तो उसका उस धन में अधिकार होता है, तो नित्यानंद प्रभु का पूरा अधिकार है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो भूल है वो यही है कि नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किए बिना चैतन्य महाप्रभु को पाना चाहते हैं तो ये घना चोरी है। इसी नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमने चोरी की, और चोरी का दंड भी बहुत सही दिया, रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे, प्रेम आवेश में लीन थे, गंगा के तट को ही यमुना का तट समझ बैठे। अब उनको वैसे लग रहा है कि हम लोग वही है, ब्रज की लीला चल रही है और ये जमुना जी है।
श्री राम दासा जी को प्रेमा विश्व हरिना गंगा तेरे यमुना पुलिन ज्ञान कैला।
अब अनेक ग्राम के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे बेचने के लिए आ गए। क्या केवड़ा दही संदेश मिठाई केला बेचने के लिए आ गए। और जैसे ही भोजन की सामग्री लेके आए रघुनाथ दास ने सब खरीद लिया। सब खरीद लिया, उनका सब खाली कर दिया सामान। उनके सामान का मूल्य चुकता कर दिया और फिर वही भोजन उनको भी खिला दिया। लो तुम्हारा जो सामान है तुम खाओ। जो भी ये देखने के लिए आया कि कैसी कौतूहल वर्धक बातें हो रही हैं, उन्हें भी केवड़ा दही और केला खिलाया गया। नित्यम को उन्हें भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोए रघुनाथ दास को चार पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। नित्यानंद के तीन अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक कौर देकर बांट दिया। तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला ले आया, उसने नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दिया और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया। जब नौकर पान ले आया और नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो प्रभु हंसे और पान चबाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं चंदन लेप और पान बांट दिए। नित्यानंद प्रभु के छोड़े भोजन का जूठन पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ तो खाया और फिर अपने निजी संगियों में बांट दिया। आनंदित रघुनाथ प्रभु इस तरह कृष्णदास केवड़ा कहते हैं कि मैंने केवड़ा दही के महोत्सव के संदर्भ में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। ऐसा कही लो नित्यानंदे रे बिहार केवड़ा दही महोत्सव नाम ख्याति आयार। इसके बाद फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने दिन में आराम किया और दिन के अंत में राघव पंडित के मंदिर में गए, वहाँ भगवान नाम कीर्तन करना शुरू किया। निजन प्रभु ने सारे भक्तों को नाचने के लिए राजी किया और अंत में स्वयं भी नाचने लगे। इस तरह सारे जगत को प्रेम आदेश से आप्लावित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु वहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु देख सके, चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं देख पा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के नृत्य की मधुरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु का नृत्य कितना मधुर है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके नृत्य को देखने के लिए आते हैं। कहाँ से, जगन्नाथपुरी से। और बाद में क्या हुआ, रघुनाथ दास ने वहां जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की और राघव पंडित करने की शिक्षा निवेदित की। रघुनाथ दास से हम नित्यानंद प्रभु से बात नहीं कर पाते हैं, इतने संकोच में है। और रघुनाथ दास ने राघव पंडित को कहा कि आप बोलो नित्यानंद प्रभु। क्या बोलो, मैं अधम अत्यंत पापी पतित और तिरस्कृत हूँ, तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण पाने की इच्छा करता हूँ। ये अपनी जो प्रार्थना है राघव पंडित को बताए कि नित्यानंद प्रभु को बोलो। अधम है पामारे मोई ही न जीव अधम मोर इच्छा है पांग चैतन्य चरण। वही उसी प्रकार की मेरी इच्छा है जैसे बोना चांद को पकड़ना चाहे। एक बोना छोटा आदमी चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, ऐसे में चैतन्य महाप्रभु के शरण लेना चाहता हूँ जल्द में योग्य नहीं है रघुनाथ दास ने। और मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु शरण लेने में, सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बामन है यह चांद धरे बारे चाय अनेक अपने कहू ताते का भोसित भी नाय। जितनी बार मैंने भाग जाना और अपने घर के संबंध को तोड़ देना चाहा उतनी बार मेरे पिता और माता ने मुझे बांध कर रखा है। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त नहीं कर सकता, कि यदि आप कृपालु हो तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों के शरण पा सकता है। तुम्हार कृपा बिना के है चैतन्य न पाए, तुम ही कृपा कर ले तारे अधम है पाए। ये दिन अयोग्य हूँ और ये याचना करते अत्यधिक भयभीत हूँ, डरता भी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ और फिर भी अगर मांग रहा हूँ तो डर भी रहा हूँ, मुझे बहुत डर भी लग रहा है ये मांगने में। किंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपालु होइए। अयोग्य मोहि निवेदन करिते करि भय मोरे चैतन्य देह गोसाई हैया सदैव। आप मेरे सिर पर अपने चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं बिना कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मोर माथे पद धरि करा प्रसाद निर्विघ्न चैतन्य पान कर आशीर्वाद। रघुनाथ दास की ये याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले, रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर तो इंद्र के समान है, इंद्र के समान है रघुनाथ दास का सुख। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने से रघुनाथ दास को ये रुचता नहीं है। इसलिए तुम सारे लोग किन पर कृपा करो, आशीर्वाद दो, ये शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के शरण प्राप्त करें। नित्यानंद प्रभु देखिए भक्तों को महत्व देते हैं है? कि तुम सब लोग इन पर कृपा करो कि चैतन्य महाप्रभु शरण प्राप्त करें। चैतन्य कृपा से नाही भाए मने सभी आशीर्वाद कार्य पाओ चैतन्य शरणी। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है वह ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता, सिर्फ स्वर्ग के सुख की तो बात ही क्या है। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन्म पाए ब्रह्मलोक आदि सुख कार्य नहीं भाए। तन्न चरण प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर अपने चरण रखे और बोले, हे रघुनाथ दास, क्योंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपनी अहति की कृपा से उन्होंने तुम्हारा केवड़ा दूध खाया और फिर रात में भक्तों का नृत्य देखकर उन्होंने भोजन किया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ आए, अब समझ लो तुम्हारे बंधन सब दूर हो चुके हैं। इस तरह आश्वस्त होकर तुम अपने घर लौट जाओ, तुम शीघ्र ही बिना किसी कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त कर लोगे। नित्यानंद प्रभु ने समस्त भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया, रघुनाथ दास ने उन सबों के चरण कमलों के सागर वंदना की। अब रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की, गुप्त मंत्रणा। अब सोचिए क्या गुप्त मंत्रणा हो सकती है, गुप्त मंत्रणा। राघव पंडित से सलाह करके उन्होंने चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांचे के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना दे दिया। नित्यानंद प्रभु के सामने डरते हैं बताने में, खजांचे को दिया, क्या दिया, 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना दिया। और रघुनाथ दास ने खजांचे को मना कर दिया कि नित्यानंद प्रभु को नहीं बताना है। देखा, किंतु जब ये अपने घर चले जाए तो इस भेंट के बारे में उन्हें बता देना। फिर राघव पंडित उन्हें अपने घर लाए और भगवान का दर्शन कराया, मंदिर का दर्शन कराया, रघुनाथ दास को माला और चंदन ले दिया। फिर रघुनाथ दास को घर के रास्ते में खाने के लिए बहुत सा प्रसाद दिया। रघुनाथ दास ने अब राघव पंडित से कहा, क्या कहा, मैं नित्यानंद प्रभु के समस्त महान भक्तों सेवकों और आश्रितों को कुछ धन देना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि तुम जिसे किस योग्य समझो उनमें से हर एक को 20, 15, 12, 10 या 5 मुद्राएं दे दो। रघुनाथ दास ने दी जाने वाली राशि का ब्यौरा तैयार किया और राघव पंडित को दे दी और सूची बनाई कि प्रत्येक भक्त को कितनी कितनी राशि दी जानी है, कितना कितना धन देना है। तो रघुनाथ दास ने अत्यंत विनय पूर्वक राघव पंडित के सामने अन्य सारे भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं और 2 तोला सोना रख दिया। राघव पंडित के पांवों की धूल लेने के बाद रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति अति कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने अपना कृपापूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। तो इस तरह से फिर इस घटना के बाद रघुनाथ दास का रास्ता खुल गया है, तो बड़ी आसानी से वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में चले गए। तो आज का दिन जो है बहुत पवित्र है। और अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? उनका प्रश्न है कि धृतराष्ट्र ने अपना शरीर क्या किया, तो वे कहाँ गए? महाभारत में लिखा हुआ है कि जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में गए तो देवराज इंद्र ने स्वयं युधिष्ठिर के सामने परिचय दिया। क्या कहा? इन मनीषी गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो और इन्हीं को अपने पिता का बड़ा भाई समझो। इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र पहले से ही गंधर्व है।
वो अपना वो स्वरूप प्राप्त कर लिया उन्होंने
जो गंधर्व का था।
तो व्यास जी ने जो है बताया कि धृतराष्ट्र मतलब कौन है वास्तव में। तो ये लोग जो है मतलब जहाँ से आए थे उसी स्थान में चले गए। अच्छा मैं प्रश्न करूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने चोर कहा, क्यों चोर कहा? रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या चोरी की जो नित्यानंद प्रभु उनको चोर कहते हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि चोर है। अच्छा नित्यानंद प्रभु के धन है चैतन्य महाप्रभु, इसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कैसे आप पुष्ट करेंगे कि नित्यानंद प्रभु के धन है चैतन्य महाप्रभु? वही नित्यानंद प्रभु ने चाहा, चैतन्य महाप्रभु तुरंत आ गए। तो इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के वश में है, तो उनकी धन संपत्ति जो है उनके अधिकार में, नित्यानंद प्रभु के अधिकार में है। धन्यवाद। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की श्री क्षीरादधि महामहोत्सव की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री राधा पाशा श्री ललिता विशाखा गौरदाय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।